संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 5 जून 2020 के साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। अमेरिका के मिनियापोलिस में 25 मई को एक काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत पर अनेक देशों में विरोध प्रदर्शन, नस्लवाद को जड़ से खत्म करने की पुकार। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन करने का आग्रह। कोविड-19 महामारी से उबरने में केवल वैक्सीन का होना ही काफी नहीं, जरूरत है वैश्विक एकजुटता और समझदारी की। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक समुदाय को बदलना होगा अपना रास्ता। पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता के संरक्षण पर सुनिएगा एक इंटरव्यू। और कोविड-19 महामारी में साइकिल साबित हो रही है किफायती और असरदार वाहन। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि जो लोग अमेरिका में गहराई से जड़ जमाए और समाज के लिए एक बीमारी बन चुके ढांचागत नस्लवाद को खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को सुना और समझा जाना होगा ताकि देश नस्लवाद और हिंसा के अपने पीड़ादायक इतिहास के चंगुल से बाहर निकल सके। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से भी कोविड-19 महामारी को देखते हुए उच्च दर्जे की एहतियात बरतने को कहा है। ध्यान रहे कि अमेरिका के मिनियापोलिस में 25 मई को गोरे पुलिसकर्मियों द्वारा 46 वर्षीय एक काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के साथ सख्ती बरतने से पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में अमेरिका व अन्य देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। संबंधित खबरों के साथ सचिन गौड़।
मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि जो लोग निहत्ते अफ्रीकी अमरीकी लोगों की हत्याओं पर रोक लगाने के लिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी होगी। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इस सप्ताह लाखों प्रदर्शनकारी कई शहरों और अन्य देशों में सड़कों पर उतरे हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहे हैं और इनमें नस्लीय न्याय की मांग की गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अव्यवस्था और लूटपाट भी देखी गई है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस की हिंसक कार्रवाई भी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार ऐसी कम से कम 200 घटनाएं दर्ज की गई हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों को कवर करने वाले पत्रकारों पर शारीरिक रूप से हमला किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया या मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि पत्रकारों पर असाधारण रूप से हमले हुए हैं और ये सब इसलिए भी दिल दहलाने वाला है क्योंकि अमेरिका में अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है जो कि देश की पहचान निर्धारित करते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में ये गुस्सा ऐसे समय में फूटा है जब कोविड-19 महामारी से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चरणबद्ध ढंग से पाबंदियों को खत्म किए जाने के दौरान कई शहरों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने से संक्रमणों की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सचेत किया है कि प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हर सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दुनिया अब भी वैश्विक महामारी की चपेट में है।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का तत्काल अनुपालन करने का आग्रह किया है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा आंतरिक प्रवासी कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में मार्च में तालाबंदी लागू किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पैदल अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी यात्राएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रवासी कामगारों का पंजीकरण करने और ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे बस या ट्रेन से निःशुल्क यात्रा कर सकें और घर पहुंचने तक उनके लिए पानी, भोजन और रहने की व्यवस्था की जाए। आवास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर बालाकृष्ण राजगोपाल और चरम गरीबी पर विशेष रिपोर्टर ओलिविए डी शूटर ने भारत में आंतरिक प्रवासियों के प्रति सरकारी रवैये पर क्षोभ जताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह आंतरिक प्रवासी मजदूरों की उपेक्षा की है उससे वो क्षुब्ध हैं, खासकर उनके लिए जिनका संबंध हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यकों और कथित तौर पर निचली जातियों से है। सरकार उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने के साथ साथ विकट मानवीय हालात में उन्हें राहत प्रदान करने में विफल रही है। पुलिस की क्रूरता से उनकी मुश्किलें और बढ़ी हैं और उन्हें वायरस फैलाने वालों के रूप में कलंकित होने से रोके जाने में सरकार नाकाम रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 मौजूदा पीढ़ी के लिए अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है और इस चुनौती पर पार पाने के लिए एक वैक्सीन का होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि वैश्विक एकजुटता की भावना के साथ वैक्सीन को हर जगह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
गुरुवार को ग्लोबल वैक्सीन समिट के आयोजन का उद्देश्य कोविड-19 की रोकथाम और इलाज करने वाली दवाइयों के लिए सामूहिक रूप से वित्तीय इंतजाम करना, नियमित रूप से होने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों को मजबूत बनाना और ऐसी अन्य बीमारियों के लिए संसाधन जुटाना था जिनकी रोकथाम की जा सकती है। कोरोना वायरस के अब तक 64 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 3,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस कार्यक्रम में वैक्सीनों को मानवीय इतिहास में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अहम मंजिल बताया गया है, जिससे हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने, चेचक का उन्मूलन करने और खसरा जैसी बीमारियों के फैलाव की रोकथाम करने में मदद मिली है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन को जनता वैक्सीन के रूप में देखा जाना होगा, एक ऐसी वैक्सीन जो सभी के लिए काम आए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के प्रयासों के कारण कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम और इलाज संबंधी सेवाओं में गंभीर बाधाएं खड़ी हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई महीने में 155 देशों में 3 सप्ताह के दौरान एक सर्वे कराया जिसमें ये बात सामने आई है।
कहीं से यूरो, कहीं से पाउंड और कहीं से डॉलर। विदेशों में रहने वाले प्रवासी कामगार अपने मूल स्थानों पर रहने वाले अपने परिवारों को धन भेजते रहे हैं। इस धन से करोड़ों लोगों को अत्यंत गरीबी से उबारने में मदद मिलती है और अंततः टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति होती है। कोविड-19 महामारी ने इस धन पर गहरी छाया छोड़ दी है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम कम से कम 60 निम्न व मध्य आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% हिस्सा होती है। इतना धन तो उनके यहाँ विदेशी सीधे निवेश या अन्य देशों से आधिकारिक विकास सहायता के जरिए भी नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगबे का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद के समय में आर्थिक हालात अपेक्षानुसार तेजी से सुधरते हैं या नहीं, लेकिन इस वैश्विक महामारी ने प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को रकम भेजे जाने की व्यवस्था की कमजोरियों को सामने ला दिया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी फैलने के बाद प्रवासी कामगारों द्वारा विदेशों से अपने मूल स्थानों को भेजी जाने वाली धनराशि में 20% यानी लगभग 110 से लेकर 445 अरब डॉलर तक की गिरावट आएगी। इसके परिणाम स्वरूप संभवतः करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे और अंततः 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा हासिल करने की रफ्तार पर असर पड़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि मानवीय गतिविधियों से प्रकृति को पहुंचने वाली क्षति को हर हाल में रोकना होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक समुदाय को अपना रास्ता बदलना होगा। शुक्रवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पृथ्वी व मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध और मानव जीवन को सहारा देने वाली जैव विविधता की रक्षा की अहमियत को रेखांकित किया जा रहा है। वर्ष 2020 में कार्यक्रम की टैगलाइन प्रकृति के लिए समय यानी टाइम फॉर नेचर है, जिसकी मेजबानी कोलंबिया कर रहा है। इसके तहत कई वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि प्रकृति हमें स्पष्ट संदेश दे रही है कि हम जिस तरह प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावास क्षरण और जैव विविधता के विलुप्त होने की गति तेज हो रही है। जलवायु व्यवधान पहले से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। इन चुनौतियों पर चिंता जाहिर करते हुए यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि मानवता का ख्याल रखने के लिए प्रकृति का ध्यान रखना होगा। आज प्रकृति हमें कार्रवाई के लिए एक मजबूत संकेत भेज रही है और ये सीख दे रही है कि अगर मनुष्य ने अपना रहन सहन नहीं बदला तो उसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसे ही मुद्दों पर यूएन न्यूज़ हिंदी की अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख अतुल बगई से बातचीत की, सुनिए ये इंटरव्यू।
So, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है और क्यों भारत में यूनेप में इस दिवस के लिए खासतौर पर क्या तैयारियां की हैं?
इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, और ये इस बार थीम जैव विविधता इसलिए रखी गई क्योंकि इसकी अहमियत न केवल भारत में पर पूरे विश्व में मानी जा रही है। अभी एक दशक जैव विविधता का समाप्त हुआ है और एक दशक इकोसिस्टम और जैव विविधता का प्रारंभ होने वाला है। इस वर्ष को सुपर ईयर ऑफ नेचर भी कहा जा रहा है। तो इन सब कारणों से और जैव विविधता का पर्यावरण से और आज स्वास्थ्य से कितना गहरा संबंध है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये थीम रखी गई है। 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करेंगे। इसके अलावा आजकल जो कोविड पेंडेमिक फैला हुआ है उससे छात्र लोग का स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं, तो छात्रों के लिए एक प्रकृति से संबंधित अर्थ स्कूल टेड एजुकेशन के साथ हम लोगों ने बनाया है।
लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर देखा गया कि मानवीय कार्य रुकने से प्रकृति पुनर्जीवित हो उठी, तो COVID-19 संकट से क्या सीखा हमने और भविष्य में इस सीख को खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस तरह नीतियों में उतारा जाएगा?
अगर आप देखें तो दिल्ली में ही जहाँ हम लोग रहते हैं एयर पॉल्यूशन की लेवल्स बहुत कम हैं। इसके बारे में भी कई जगह लिखा जा रहा है कि गंगा या यमुना नदियां जो हैं काफी साफ दिख रही हैं। इसका वैज्ञानिक ढंग से अगर डेटा कलेक्शन किया जाए तो इसको फिर करने के लिए और सस्टेन करने के लिए अभी बहुत ज्यादा प्रयास और करने होंगे। पर एक फायदा जरूर सामने आया है कि 2 या 3 महीने के लॉकडाउन से जो मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण दूषित हो रहा था उसको संभाल के कार्य किया जाए और उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए तो पर्यावरण में सुधार बहुत ही आसानी से हो सकता है। जो हम आजकल न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जब हम न्यू नॉर्मल की तरफ अग्रसर होंगे तो क्या हम फिर इन सब चीजों की तरफ ध्यान देंगे या हम पुनः बिजनेस एज यूजुअल की तरफ चले जाएंगे? तो परिवर्तन हमें अपने दैनिक दिनचर्या में लाना होगा, अपने जीवन में लाना होगा। इसके लिए नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता तो है, पर मेरे ख्याल से जनमानस के बिहेवियरल पैटर्न में परिवर्तन की भी बड़ी आवश्यकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान और इसके बाद दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, इस बारे में साइकिल की भी बहुत अहम भूमिका है। बुधवार 3 जून को मनाए गए विश्व साइकिल दिवस के मौके पर कहा गया है कि साइकिल के जरिए दुनिया भर में स्वास्थ्य परक और ज्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए सार्थक बदलाव लाने में आसानी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने विश्व साइकिल दिवस पर कहा कि इस वर्ष हम साइकिल की अनोखी विशिष्टता, टिकाऊपन और विविधता को पहचान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसे बहुत धनी देशों से लेकर विकासशील देशों और कम विकसित देशों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। COVID-19 संकट के कारण आवाजाही और परिवहन साधनों के इस्तेमाल में भारी कमी आई है। इनमें लोगों के एक साथ चलने फिरने की यात्राएं भी शामिल हैं। साथ ही खेलकूद संबंधी और मनोरंजक गतिविधियां भी जैसे ठप हो गई हैं। लेकिन साइकिल ने न केवल वैश्विक महामारी के दौरान भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, बल्कि अनेक शहरों में साइकिल का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ा है। इनमें न्यूयॉर्क सिटी भी शामिल है जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा है कि साइकिल को न केवल परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि COVID-19 के संकट के दौरान और उसके बाद भी स्वस्थ रहने के लिए साइकिल का इस्तेमाल जारी रखा जाए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।